परंतु वहां सामने निश्चित रूप से केवल दर्शनार्थी कर्म का उदय है। तो केवल दक्षिणा रथ ये सर्वनाशी प्रकृति है, तो उसमें स्पर्धक कौन कौन से होंगे? जिसको हम सर्वनाशी स्पर्धक है, चक्षु दक्षिणावरण, अचक्षु दक्षिणावरण और अवधि दक्षिणावरण, ये देश का होंगे, तो उसमें स्पर्धक कौन से होंगे? हाँ, तो सर्वनाशी स्पर्धक भी होंगे और देश का स्पर्धक भी होगी, तो शहर अस्थि दारू और लता ये सब उसमें पाए जाए। परंतु ये चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन जो हमें पसंद है, अभी हम जरा देखते हैं चक्षु दर्शन किसी होता है अचक्षु दर्शन। तो दर्शन है सामान्य अवलोकन, अब जो चक्षु इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान होता है उससे पहले होने वाला जो सामान्य अवलोकन है उसको कहते हैं चक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शन यानी चक्षु दर्शनावरण का वहां चौक्षण करता है, क्योंकि इंद्रियों द्वारा इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान चलेगा उसके पहले वाला जो दर्शन है उसमें भी कोई उसमें सर्वभाग्य देखा नहीं उसकी हिंदा निंदा करेगी। तो ऐसे ये जो वहां स्पर्धा है दोनों प्रकार के चक्षु दर्शनावरण, तो चक्षु दर्शन किस किस को होता है, कौन से जीवों को होगा? एक इंद्रियों से पंचे इंद्रिय तक के जीवों में चक्षु दर्शन किसने पाया जाएगा? और चक्षु दर्शन किसने पाया जाएगा?
प्रकट करता है तो सामने विख्यात कर्म का उदय पाया जाता है।
उसमें कौन कौन से सर्वस होंगे? और समय की क्या बने सर्वी है तो अब जो समय प्रकृति जो कर्म है वो कैसा है? देश अभी पूरा बात नहीं करता, यानी उसका उद्देश्य बना रहे और समय तो नहीं बना रहे। जो होता है तो उसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। तो सम्यक प्रकृति का है तो दर्शन होनी ही प्रकृति, तो उसका उदय होते हुए भी जीव का सम्यक में बाधा नहीं आती, उसका सम्यक भी चलता रहता है। तो उसको कहते देशवासी प्रकृति। तो यहाँ तो मिथ्या को उसकी कैसे हो गया उसने जो हम बैठा करते थे मानसिक को हम बात देखी जो हम समय को अब अन्य जो कार्यक्रम की प्रकृति है अनंता पूंजी क्रोध मान माया रोग ये सर्वघाती प्रकृति। सर्वघाती किसका घात करती है? अनंता पूंजी सम्यक का पूरा कर अप्रत्यक्षानंद क्रोध मान माया रोग जो कर रहे हैं वो भी सर्वघाती प्रकृति है। तो वो अहमान भी त्याग के परिणाम नहीं होने चाहिए, पूरे उसका घात होता है। अभी विरति का घात होता है अभिरति है तो उसको भी सर्वभाषी प्रकृति का प्रत्यक्ष आनंद भी सर्वभाषी प्रकृति सारो बोध मान माया दो। अब कौन से बच्चे संतुलन है वो देशभाषी प्रकृति है। तो उसमें कौन कौन से फल रहेंगे? सारो क्षय अच्छी सारो लता ये संतुलन। अब जो नौ पड़ता है नौ नौ पड़ता है वे भी देशवासी ही है। हास्य अभियर तो वही दुख था और जीत भी ये भी देशवासी प्रकृति है। उसमें भी वैसे ही चारों प्रकार के सर्वक पाए गए तो मूल की बात। अब जो अंतराय कर्म है उसमें कोई भी सर्वभाषी प्रकृति नहीं है। पांचवी जो अंतराय है वे कैसे देशवासी है तो ये हमने भाषित हमने देख ली। हमने तो केवल ज्ञानानंद को बताया वैसे ये जो सभी सर्वभाषी प्रकृति और देशभाषी प्रकृति है। सर्वभाषी में तीनों ही सर्वभाषी प्रकृति होते हैं और देशभाषी प्रकृति होते हैं स्पर्धक लोगों को प्राप्त होते हैं। सर्वभाषी स्पर्धक और देशभाषी स्पर्धक ये भी कोई कंपनी नहीं है ना स्पर्धक का प्रकृति है क्योंकि नए शब्द है पहली बार सुनते हैं तो उसको कुछ कंफ्यूजन होता है कंफ्यूजन नहीं होता है। ये बार बार हो रहा है आप फिर से दोबारा करना तो ये सारी बातें ख्याल में आ जाए। हम इसमें से देखते हैं हमने वो पर्याय ज्ञान की बात की थी तो पर्याय ज्ञान जो है सबसे ही ज्ञान का प्रकार तो उतना ज्ञान तो जीवों को प्रकट करेगा ही। पर्याय ज्ञान भी छूट गया जिसका उसके ऊपर भी आवरण आया ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसको कहते पर्याय ज्ञान जो है वो निरावरण ज्ञान उसका आवरण का कर्म तो है कर्म का स्वभाव है परंतु उसका कभी भी हृदय रहेगा नहीं उतना तो ज्ञान प्रकट होगा। तो हमारा प्रश्न है ये पर्याय ज्ञान किसको होता है? तो निगोजियों को होता है ऐसा मुझे नहीं खा रहा तो क्या हमें होता है या नहीं होता ज्ञान है क्योंकि वो पेट पर नहीं आता। कि क्या हमें पर्याय ज्ञान है या प्रश्न पूछा था तो कोई कहेगा कि हमें क्या निगोद समझ रखना है क्योंकि हमने शास्त्र में सुना ना कि निगोद जीवों को पर्याय ज्ञान है। तो यदि हमको पूछा कि हमें आपको पर्याय ज्ञान है हमें लगता है हम क्या निगोद कि हम ज्ञान वाले जीव हम तो संधि पंचम के पर्याप्त मन जीव है हमारा ज्ञान तो उनसे अनंत गुणा पर्याय ज्ञान के अनंत गुणा बात सही है परंतु इसका परिणाम उत्तर जो है वो दूर मुझे बताओ किसी करोड़पति के पास एक रुपया है या नहीं? जिसके पास करोड़ रुपए है क्या उसके पास एक रुपया है कि नहीं? है उसका अधिक ज्ञान है तो ये सभी उसमें गर्वित है, वो सब ज्ञान उसके पास है। यदि तुम्हारे पास पर्याय ज्ञान नहीं मानोगी तो तुम्हारे पर्याय ज्ञान का उदय मानना पड़ेगा। ये कोई पर्याय ज्ञान नहीं है तो क्या मानना पड़ेगा? पर्याय ज्ञान का उदय है क्योंकि जो तो ज्ञान नहीं है उसका वहां आवरण का उदय रहता है। समय ज्ञान चंद्रिका में पंडित चौरणी लिखते हैं कि ज्ञान वाचना में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पर्याय ज्ञान बिना कोई जी नहीं है। केवल ज्ञानियों के भी पर्याय ज्ञान संभव होता है और महाज्ञान में अल्प ज्ञान का भी जानना। ये जो इंद्र यूनिवर्स ने लिखा है वो पंडित जी को यहाँ कोट किया है। केवल भगवान के क्षयोत्सव में ज्ञान नहीं है। क्षयोत्सव किसने करेगा? वो देशवासी। जब जिस जीव को केवल ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं? शारीरिक ज्ञान। तो उससे कौन से कर्मों का क्षय हुआ है? अकेले केवल ज्ञान और उनका क्षय होने से केवल ज्ञान हुआ है। केवल ज्ञानावरण लोक का सही मतलब केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान के उदय केवल ज्ञानावरण के उदय में मस्तिष्क में ज्ञान का होना चालू है क्योंकि केवल ज्ञानावरण का उदय तो है फिर भी मस्तिष्क में ज्ञान होने में कोई बात नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मस्ति ज्ञानावरण से ज्ञानावरण का उदय होता है और अकेले केवल ज्ञानावरण का क्षय होने से केवल ज्ञान हो जाए? तो ऐसा नहीं है। यानी जिसको हम शायद ज्ञान कहते हैं ना तो उसमें सभी ज्ञान आवरण का क्षय होना है। ये जो सर्वघाती प्रवृत्ति है केवल ज्ञान आवरण और देशघाती प्रवृत्ति मनुष्य का अवधि के मन पर ज्ञान आवरण आदि उन सभी के क्षय से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या है शोक समझना हम अकेला शोक समझ करते हैं परंतु जब हम शायद भाव वृत्ति करेंगे शायद ज्ञान वृत्ति करेंगे तो उसमें अभी हम ज्ञान का क्षय ज्ञान है तो ज्ञान आवरण जितनी सारी प्रतिक्रिया है उन सबका क्षय होगा। कोई क्षय ज्ञान नहीं होगा। जब हम शायद दर्शन की बात करते हैं तो ये चक्षु अचक्षु ये तो क्षणिक भाव है परंतु शायद दर्शन जिसको कहते हैं तो उसमें जितने हमने सारे छोटे हम प्रतिक्रिया देखी है उन सभी का अभाव ये अभाव निश्चय इस बात का अभाव शब्द द्रव्य नियम में आता है परंतु करना में उसको अभाव में तीन बातें बता दी किसी का उत्सव भी हो या क्षय भी हो या चौथम भी हो ये उत्तर का अभाव उसको हम अभाव कहेंगे। ये तो द्रव्य नियम की तीन बातें करना नियम में तो वो सत्ता में पड़ा है हम कहेंगे वो है हम कहेंगे भगवान के बता रहे भगवान जी जो बताए ना वो अभी हम बता रहे कि हमारी अपनी बात नहीं किसी आचार्य ने भी किसी ने स्वीकार नहीं की कि हम बता रहे वो क्या कहते हैं भगवान ने जो बताया है वो हम आपको बता रहे क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान की ये केवल ज्ञान के ज्ञान का विषय है। समूह के जो जितनी सूक्ष्म बातें है अवधि का नहीं जान सकते कोई बहुत विशिष्ट अवधि ज्ञानी है एक करोड़ से एक परमाणु तक को भी जान सकते परंतु ये मूल वजन किसका है सर्वज्ञ होगा जिन्होंने ये सारी बातें प्रत्यक्ष जान कर बताई। तो उसमें ये जो चौथम जो साइड से हम चर्चा करें ये थोड़ा अपना विषय है ही नहीं परंतु इस बहाने में उसकी भी चर्चा करें। चौथम तो हमारे ख्याल में आ गया उसको बड़ी बात है याद है तो भूल गए कौन करेगा आप बताओ। हाँ मेरी नहीं बात ना बता पुस्तक में बहुत पता है गुजराती में बहुत चलेगा वो पढ़ी
हाँ
से ऑप्शन अभी आराम से पहला बार आप करेंगे हाँ तो सर्वग्रामिक कर्म तो वर्तमान उदय हो जाए तो पूरा रात हो जाए तो क्षोभ की जो परिभाषा है उसमें क्या है कि वर्तमान जो निषेध है उसमें सर्वग्रामिक का उदय नहीं होगा, भले वहां पड़ेंगे परमात्म परंतु उदय उनका नहीं होगा। तो वर्तमान कालीन सर्वग्रामिक कर्मों का उदयाभाविक है एक बार, अभी वो अंदर भविष्य में पड़े हैं, पढ़े तो पढ़े रहेंगे, वो उस रूप से उदय में नहीं आएंगे, है वही पर बने रहेंगे। तो उसको कहते हैं भविष्य कालीन उन्हीं पदों को, उन्हीं ने सर्वकालिक पद को होगा सदा सूक्ष्म है वही पर बढ़े। तो उदय किसका होगा? तो देशघातिक पदकों का उदय, वर्तमान काल में जो देशघातिक पदक है उनका उदय, इसको कहते हैं सर्वोत्तम। यह हमने मंदिर ज्ञान पर भी बताया कि मंदिर ज्ञान का सर्वोत्तम होता है और जिनको यहाँ मंदिर ज्ञान प्रकट है उसका हमने अभी सुबह नहीं बताया, क्या है याद है कि भूल गए? ये फिर से पढ़ते तो अपने कुछ शांति पढ़ने क्या है प्रकृति क्या है इसका थोड़ा स्टार्टिंग कंफ्यूजन होगा, कोई बात बार बार पढ़ेंगे तो उसका आपको ध्यान में आने लगता है थोड़ा थोड़ा। हमें तो चार चार पांच पांच वर्ष तक इसका पता ही नहीं, प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, क्या बातें हो रही, कुछ पता नहीं चलता। पढ़ते थे पढ़ाते थे कल्चर कर तो अभी ये जो थोड़ा दिमाग भी बैठने लगा कि ये प्रकृति क्या है, तो इसमें इतनी वर्ग वर्गना ये सारी बातें होती है और ये तो अनुभव को बताने वाले होते हैं ऐसी जो बातें, प्रकृति और स्पर्धन पर्दत तो अनुवाद तो परमाणु में तो मुंह को नहीं, और प्रकृति की जो कुछ ज्ञान जो देखो दरबार की तो ये जो बातें है फिर से दोबारा आप पढ़ेंगे तो ये बात आपको ख्याल में आ जाए। भले अभी हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, फिर भी ये समझना मूल चीज है, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो ख्याल में आता है या नहीं है ये मूल देखना। देखो यहाँ एक बात समझ लो कि केवल ज्ञानावरण प्रकृति सर्वज्ञाति है परंतु वो ज्ञान का संपूर्ण भाग नहीं करता। अभी हमने देखा ना अपने अपने प्रतिपक्ष का भाग करते, मात्र अपने प्रतिपक्षी केवल ज्ञान का सर्व का भाग करती है, उसके उदय में तो अन्य चार ज्ञान का शोषण चालू है। केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है और हम देखते हैं कि जीव मुनियों को तो उसका वहां शोषण कर रहा। उसी प्रकार ज्ञान बुद्धि आदि पांच दर्शनावरण कर्म सर्वभाषी है परंतु वे दर्शन का संपूर्ण भाग नहीं करते, यानी नींद की निद्रा की अवस्था में भी दर्शन गुरु का कार्य तो चलता ही होगा, उसने जागरूक अवस्था का नाश किया है, दर्शन गुरु का या दर्शन के कार्य का नाश नहीं है। उनका प्रतिपक्षी जो जागरूक अवस्था उसका पूर्ण भ्रमण करती है, उनके उदय में अन्य चार दर्शनावरण का उदय या शोषण यथा योग्य चलता रहता है। दोनों नाम क्यों दिए? क्योंकि केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण का तो उदय चलता है और अन्य चले चतुर्थ का उदय दर्शनावरण तो उसका यथा योग्य शोषण करता है। अर्थात केवल दर्शनावरण सर्वघाती है उसका उदय बाले संस्थान के अंत तक निरंतर रहता है और उसके नीचे केवल दर्शन का पूर्ण लाभ होता है, परंतु अन्य चक्षु और चक्षु दर्शन या अभिदर्शन होते हैं। ये वाक्या में अब जागृत अवस्था में चार दर्शनावरण का उदय है। उदय जब लिखा है तो वहां उदय रहता है, अब निद्रा अवस्था में कितना है चार दर्शनावरण के साथ एक निद्रा कोई भी एक एट ए टाइम पांच निद्रा का उदय नहीं होगा, दो निद्रा का मुखा एक साथ उदय हुआ ऐसा नहीं होगा, एक काल में एक कोई निद्रा का उदय हुआ, अभी पांच मिनट के बाद दूसरे निद्रा का मुखा उदय है, पहले तो तरल निद्रा थी अभी गाढ़ी निद्रा होगी, हो सकता है नहीं, परंतु एक समय में तो किसी एक निद्रा का उदय होगा। इसलिए निद्रा अवस्था में पांच का अभाव, अभी कर्मों का क्षय होकर अलग रहेगा, कर्मों का क्षय होकर साइड भाव कर सकता है, जो पांच भाव हमने देखे याद है, पांच भाव जिनके अलग अलग पांच भाव हमने देखे थे, हमने पहले पढ़े भाव संगीत कौन सा भाव देगा, हमने ज्ञानावरण को बताया ज्ञान जिसको कहते हैं, तो मति ज्ञान ये जीवा सर्वोत्तमी भाव है। कर्म में चौक्षम हुआ, कर्म में तो चौक्षम हुआ, अर्जुन में क्या हुआ विशिष्ट ज्ञान प्रकट है, उसको हमने कर्म की तरफ से उसका नाम क्या दिया चौक्षमी भाव। तो जीव में कौन कौन से चौक्षमी भाव होंगे, ज्ञान के मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान बौद्धि ज्ञान मनोबल ज्ञान, इनको क्या कहेंगे हम चौक्षम ज्ञान। और जो तीन ज्ञान है कितने तो दर्शनावर की जो देश घाती है सर्वघाती में तो उदय अवदय भाव लगे, देश घाती में एक चौथम ही भाव लगे। तो कौन कौन से व्यक्ति चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये क्या होंगे चौथम ज्ञान जिसकी दर्शन सात ज्ञान और तीन दर्शन, तो दस चौथम भाव यहीं पर लगे। जो हमने तो वहाँ वो तो सब देशवासी ही है, तो उसका भी शोषण चलता रहता है, तो ये पांच हुए शोषणिक दान लाभ वो भी तो दस और पांच पंद्रह तो शोषणिक भाव याद रखे। अब रेत की इसमें शोषण समय पर हाँ शोषण जाए और संयमान थोड़ी मिलती थोड़ी और पांच अवस्था हमारे को बोलती, तो शोषण सम्यक प्रकृति का रचित करना, तो सम्यक प्रकृति को हमने देश राज्य प्रकृति देखा है और इच्छा का समय निशा को तो सर्वभाषी प्रकृति देखा, तो भी उदय होगा देशवासी का यानी सम्यक प्रकृति का उदय होगा, और जो सर्वभाषी इच्छा का सम्यक निशा वो सत्ता में बने उदय रूप जब जब होंगे तो समय में प्रकृति रूप होकर उदय में आए। चौथम समय की बात आगे हम उत्तम समय की बात उसको बताएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी, परंतु यहाँ सर्वघाती जो प्रकृति है ना इच्छा का समय की इच्छा वो तो भविष्य काल में बनी रहेगी और वर्तमान काल में जो उदय आने उदय हो जाएगी उसकी स्थिति भी होगी, तो समय प्रकृति रूप होकर देशवासी होकर उदय में आएगी। तो इसलिए वहां चौक्षण समय को बढ़ते चौक्षण में एक चौक संगठन है वो देशवासी इसमें दो प्रकार के स्वर्ग पाए जाते हैं, सर्वराशि स्वर्ग और देशराशि स्वर्ग। वहां भी देशराशि का उदय होगा और सर्वराशि का उदय नहीं होगा, सोक्ष्म चारित्र। और वहां सही माने थोड़ा संयम है, थोड़ा असंयम है, उस पर भी एक सोक्ष्म भाव होगा।
औषधि कौन कौन से Sí, todo bien.
Bien. दोनों पद मुख्य रूप से जो भाषिक तत्व बच्चे छोटे ही होते हैं, परंतु ये जो नाम करने जो है उसमें गलती भाव होते हैं धीमी धीमे होती है और वो अपने बच्चे हैं क्योंकि सर्वोत्तम गति क्या था इसलिए बाकी भाव धीमी भी नाम नहीं रहता है। और थोड़ा पहले से हम देखते हैं इतना ही समझना है कि जब जब सारी भाव प्रकट होगा तो सर्वकाली हो या देवीवादी सभी पंक्तियों का तय होगा तो ही सारी भाव प्रकट होगा, भले वो ज्ञान में लक्षण है जो शिक्षण लक्षण है जो और सर्वोत्तम देश राज्य प्रकट इसमें जिसकी भी पेज है हिंदी
पचास गुजराती पचास
पचास कर्मों का प्रयोग कर साई बहुत प्रकट है, हमने इसको देखा है भी नहीं पढ़ रहे पता हुआ है कर्मों का प्रयोग होकर साई बहुत प्रकटता है और सर्वोत्तम होकर सार्वजनिक भाव प्रकट देखिए जीव का भाव तो जीव का अपना है परंतु सामने कर्म की अवस्था देखी है वैसे इसके भाव को भी नाम किया जाता है। ज्ञान तो ज्ञान है कर्म के सर्वोत्तम के कारण जीव को ज्ञान नहीं हो रहा ये बात ख्याल में देखिए जब बादल आते हैं और सूर्य का प्रकाश थोड़ा मंद हो जाता है वो मन में जो प्रकाश जो है वो बादलों के कारण नहीं है प्रकाश है वो उनके कारण उसमें जो मंदता है वो बादलों के कारण परंतु जो है वो तो सूर्य का है। वैसे हमारा जो ज्ञान प्रकट है वो हमारा अपना स्वभाव है तो हमारा स्वभाव तो केवल दर्शन केवल ज्ञान का है परंतु उसमें अभी जो निहितता है उसमें हम निहित रूप से कर्म भी करते हैं होता तो जिनका अपने में अपने धर्म की योग्यता परंतु अभी यहाँ कर्मों का निमित्त पाकर सामने कर्म उपस्थित है इसलिए जीव के ज्ञान को भी हम कर्मों की तरफ से नाम दे रहे ये उसका सर्वोत्तम ज्ञान है। जब कर्मों का क्षय विद्यमान है तो जीव ने अपने स्वयं की योग्यता से केवल ज्ञान प्रकट किया है तो हम उसको कहेंगे उसका साहित्य ज्ञान है। कर्मों के क्षय ने केवल ज्ञान को उत्पन्न नहीं कराया केवल ज्ञान को जीव का अपना भाव है परंतु उस समय सामने कर्मों में क्षय पाया जाता है ज्ञानावरण का क्षय पाया जाता है उनकी तरफ से जीव के भाव को क्या नाम दिया था ज्ञान को शायद ज्ञान है। तो जीव का भाव और कर्म की अवस्था दोनों साथ साथ चलते हम दर्पण के सामने जाके खड़े होते हैं तो वहाँ प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब बन जाए कि हम
पड़े
एक साथ है और वो दर्पण की जो अवस्था है वो अपना है प्रतिबिंब वो दर्पण की अवस्था दर्पण की उसके अपने कारण भी और उसके लिए हमारा प्रतिबिंब है ऐसा लगता है हमारी अवस्था है ना। तो ये मेरी अवस्था अपनी अवस्था तो अपने या सभी की अवस्था की बात है तो जो हम अपने मान रहे तो या तो हम खड़े हैं और सामने दर्पण में कुछ अपना प्रतिबिंब वहाँ खड़ा है तो जो प्रतिबिंब वहाँ जो दिख रहा है वो दर्पण की अवस्था है और यहाँ जो है वो सही की अवस्था है तो ये दोनों अवस्थाएं एक साथ एक दो द्रव्य में अपनी अपनी अवस्था अपने अपने कारण से विद्यमान है तो उसमें जो ये निमित्त निमित्त संबंध है उनका समय एक कार्य दो द्रव्यों से भिन्न भिन्न कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता। यदि मेरे कारण वहां प्रतिबिंब है तो सामने दीवार में भी प्रतिबिंब पड़ना है तो वो प्रतिष्ठा नहीं तो ये आईने में ही क्यों दर्पण में ही क्यों प्रतिबिंब मिलता है क्योंकि वो उसकी स्वयं की योग्यता से प्रतिबिंब पड़ना चाहता है। होता है, वैसे ही अब यहाँ जीव की जो अवस्था है वो जीव के अपने स्थान की ओर क्या करती है, उसी समय कर्म में भी वैसे की अवस्था पाई जाती है। दोनों का काल एक गर्भता उदय हुआ, इसलिए मुझे क्रोध आया, कर्म का ऐसा हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी सब्जी आते हैं कि ये जीवित जीवित क्या होता है और इतना कर्मों का उदय आया इसलिए हमको बहुत करना पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। जीव जब यहाँ क्रोध को मिलता है तो सामने वहां क्रोध कर्म का उदय, कर्म का उदय हुआ इसलिए मुझे वैसा करना पड़ेगा, उनको आदि हो गई कर्म तो सबसे भगवान की ओर से कर्मों की पूजा करें, समय हमारा कुछ हो गया तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये जब जीव में विशिष्ट भाव होते हैं, कर्म में विशिष्ट अवस्था होती है, दोनों के नाम एक हों, एक समय में होते ना दोनों, तो कहेंगे कि जीव ने कर्म में ऐसा किया है, कर्म ने जीव को ऐसा किया है, कर्म का उदय आया इसलिए जीव को ऐसा किया, अरविंद भगवान ने कर्म का नाश किया, कथन ही तो ऐसी हो जीव जैसे कथन किया जाएगा, परंतु कार्य को अपने अपने द्रव्य में भी हो, ये बात मूल में मूल समझनी है। तो यहाँ जब हम देख रहे थे कर्मों का क्षय होकर क्षय भाव प्रकटता है और क्षयोत्तम होकर क्षयोत्तमी भाव प्रकट होता है, ये तो निमित्त की भाषा है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं समझे कि अरे हमारा क्षयोत्तम नहीं हुआ, हमारा क्षय नहीं हुआ तो हम क्या करें, हमारा क्षय इससे हमारा क्षय क्या प्रकट नहीं हो रहा, तो ऐसी बात है नहीं। शायद ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के ज्ञानावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है, अभी हमने शायद बहुत सुंदर चर्चा की। शायद दर्शन अर्थात केवल दर्शन सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के दर्शनावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है। शायद समय सर्वघाती ऐसे मिथ्या और संबंधित है और देशघाती की जो सम्यक इन दोनों ही प्रकार के दर्शन होने का क्षय होने पर प्रकट होता है और शायद चारित्र भी दोनों ही प्रकार के चारित्र होने का क्षय होने पर होता है, यानी जब ये 25 साल के प्रकार है उनका क्षय हो जाएगा, अनंतानुबंधी आदि 16 और 9 प्रकार सबका क्षय होगा तो शायद चारित्र प्रकट होगा। अंतराय कर्म की मात्र देशा की प्रकृति होती है, इसलिए उनके क्षय से शायद दान शायद लाभ शायद भोग शायद भोग और शायद वीर्य प्रकट होते हैं, ये तो शायद भाव की बात कर रहे हैं, यानी सर्वघाती हो या देशघाती हो जितनी कुछ प्रकृतियां है उस कर्म की उसका क्षय होगा तो शायद भाव प्रकट हो, परंतु क्षोत्तम भाव को मात्र देशघाति के कर्मों के क्षोत्तम होने पर ही होता है, सर्वघाती प्रकृतियों में क्षोत्तम नहीं होता, केवल ज्ञानावरण का कभी क्षोत्तम नहीं होता, निद्रा कर्म में कभी क्षोत्तम नहीं होता, केवल दर्शनावरण में क्षोत्तम नहीं होता, विश्वास का कभी क्षोत्तम नहीं होता, डॉक्टर सम्यक तो होता है परंतु वहां सम्यक प्रकृति का उदय है, इसलिए वो विचारों का डॉक्टर नहीं देगा, एक सर्वघाती प्रकृतियों पर डॉक्टर भाव को भी प्रतीत होगा नहीं। उसी प्रकार आघाती कर्मों में भी डॉक्टर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, डॉक्टर तो देशघाती प्रकृतियों पर प्रतीत होगा। ऊपर कहे आए इस प्रकार शायद भाव तो नौ ही है और अब देश राज्य पर घटाएंगे तो 18 सार्वजनिक भाव तुम्हारे चाल में सरल जाएंगे, अभी हमने घटाएंगे सार्वजनिक भाव में उदय तो देशवासी का होगा, उसे समझने के लिए सर्वराज्य और देश राज्य प्रवृत्तियों के नाम दिए गए, अभी हमने देखे थे केवल यहाँ घटा जो है हम जीवन देख रहे हैं गुजरात में और खुशी बोर्ड में उसके पश्चात अब देवराजी की तरफ देखकर शास्त्री भाव याद करो, जो अभी हमने बताया कि जो देवराजी प्रकृति यहाँ राइट साइड मिलती है उस पर लेकर भी शास्त्री भाव प्रतीत होता है, मधुशुदा आदि चार समय ज्ञान और तीन पूर्ण ज्ञान, ये जो सात ज्ञान है चौथम ज्ञान वो इस पर चौथम सम्यक शराब चाहत और संयमा सिंह और दाना की पांच ये समय चौथम। इस तरह विचार करो कि जो नरक ध्यान में आता है ज्ञान रह जाता है करना नहीं पड़ता। अन्य पानी आने का प्रयास को देखकर हमारा जो विषय है ना पांच लोग वो तो अभी प्रारंभ ही नहीं किया। ये पहले उनके पहले सब था क्योंकि क्या है विशिष्ट शब्दों के साथ हम परिचित नहीं है और बार बार उनके नाम आने वाले स्वर्ग क्या होते हैं अनुभव क्या कौन होता है कैसे होता है क्या है तो फिर बाद में जाकर ये क्या चल रहा है कुछ हमारे समझ नहीं आ रहा इसलिए पर्व और प्रकृति पर इतना सारा जोर देने को समझाना। अब यहाँ और शब्द आते हैं उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ ये जो अपकर्षण और उत्कर्षण सीखा उसकी बात करें देखो जब भी कोई ना कोई इसके परिणाम करते हैं तो उन परिणामों के कारण क्या होता है कि नया बंध तो होता ही है परंतु पूर्व में जो बंधा है सत्ता में जो पड़े हैं कर्म उनमें भी बहुत सारा परिवर्तन होता है। यानी हम अकेले कर्म बांधते इतना ही नहीं पूर्व में बंधे हुए कर्मों में भी बहुत वेरिएशन होती है। पहले बहुत सत्ता स्थिति बांधी थी वो बंद नहीं करती है बहुत अनुभव मानना था वो भी कर सकता है ये उत्तर भी हो सकता है कि अनुभव कौन बांधा था मान लो अपने रिश्ते का कौन बांधा है और ऐसे उसके परिणाम होंगे कि वो अनुभव बढ़ गया। अभी वर्तमान में तो पाप कर्म करने से पाप तो बनता ही है तीव्र अनुभव तो बनता ही है पर पूर्व में कभी थोड़ा पाप किया था उसका भी अनुभव बढ़ गया उल्टा भी हो सकता है। अभी के पूरे पुण्य परिणाम के कारण कभी कभी तो पाप पूर्व बांधा वो संक्रमित कर्म प्रधान करोगे आता है वो सादा बुद्धि हो सकता है और जो कोई पाप कर चुकिया है उसका अनुभव फिर भी होता और पुण्य कर चुकियों का अनुभव बढ़ता है नया तो अलग होगा ही होगा परंतु जो पूरे ऑलरेडी वहां सत्ता में पड़े हैं उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और ये जीव के भावों पर निर्भर है। यदि ऐसा ना हो कि जैसा हो रहा है वैसा ही भाव करना पड़े तो उसमें से छूटने का कोई भी रास्ता नहीं तो जीव स्वतंत्र है अपने भाव करने में और उसके जैसे भाव होते हैं या जैसे तत्व विचार होते हैं या जैसे जैसे शास्त्र स्वागत होता है तो उसके कारण कर्मों में क्या क्या बातें बनती है और ये सहज रीति से कैसी बनती है ये सब चर्चा इसमें आ वो कर्म का उदय ऐसा इसमें कोई डरने की बात ही नहीं कर्मों के उदय के कारण अपने भाव नहीं होते अपने भाव के कारण कर्मों को उदय में आना से रोकना ये तो होता है ऐसे भाव निर्माण हो जाए तो स्थिति बढ़ जाए कि कर्म को उत्सवित होना है ना तो ये उल्टा नहीं है। हरे कृष्ण क्या समझते जितना उदय आएगा उतना जीव को भाव करना ये तो बड़ा भी ना होगा परंतु कौन से भाव करने वो जीव अपनी योग्यता से करता है तो उस काल में कर्म में भी वैसे वैसे क्या क्या बातें हम उसमें चर्चा करें किसी की कमी बढ़ती है कोई कमी नहीं बढ़ती है किसी में अनुभव कितने बढ़ता है कितने कम होता है की चर्चा हम करेंगे। और यहाँ अपकर्षण और उत्कर्षण की बात करते हैं जीव के परिणामों के निमित्त से जब सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुमान हम देखो ना हमने कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति बांधी है वो उसको देखी और अनुभाग में भी कैसा फल देगा कर्म तीव्र देगा या मंद देगा उसको कहते हैं अनुभाग जो हम स्वर्गों में नापते हैं कौन से टाइप के स्वर्ग है चार चार हमने मांगी है तो उसमें कितना अनुभाग है तो ये स्थिति और अनुभाग जब घटते हैं तब उसको कहते हैं अपकर्षण 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 है कम है क्या कम होता है स्थिति और अनुभव घटना इसको कहते हैं अपकर्षण और जब बढ़ता है खुशी भी बढ़ती है और अनुमान भी अधिक होता है तो उसे कहते हैं उत्कर्ष। तो अपकर्षण में किसी की हानि होती है उसे चार द्वारा समझा है। ये जो यहाँ आयुर्वेद बताए ना जिससे रचना जिस पहुंचे सारे आगे बढ़ सकता है तो उसमें जो अधिक वाले परमाणु है वो अपनी जगह छोड़कर कुछ परमाणु ही जाए कभी के कभी नीचे कभी नीचे नहीं आते कुछ परमाणु नीचे आते हैं नीचे आते हैं उनकी स्थिति बढ़ती है। अधिक मान लो कि हजार साल बाद उदय है अब उनकी स्थिति बढ़ गई और 100 साल की हो गई या कोई एक अंदर उदय आ गए हो गए तो उसमें स्थिति घट गई। कोई स्थिति का घटना उसको कैसे अपकर्ष तो ये हमने पहले नीचे घटना देखी थी उसमें ऊपर के नीचे कोण में कुछ परमाणु नीचे के नीचे कोण में आम नीचे है इस प्रकार समझ लिया जाता है। अभी हम बोर्ड पर देखते हैं जरा
एक
तो सूर्यावली में आवली काल तो हमेशा एक उदयावली है, तो उसके ऊपर से हमने जो नीचे है उसमें से कुछ परमाणु उसकी स्थिति बढ़ सकती है तो बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं उत्कर्षण। वैसे यहाँ भी जो कम अनुमान है उसका अनुमान बढ़ेगा। बाद में जब हम देखेंगे पांच लब्धि के प्रकरण में उसमें तो अप्रसन्न कर्मों का अनुमान तो घटता जाएगा और प्रसन्न कर्मों का अनुमान घटता बढ़ जाएगा। ये बताएंगे कर्मचारी शब्द भी हमको कितने अपकर्षण क्या है और उत्कर्षण क्या है, किसी का घटना और अनुमान का घटना ये अपकर्षण के लगता है और किसी और अनुमान का बढ़ना ये उत्कर्षण के लगता है। अब इसके अधिक चर्चा हम तो प्रश्न है, सुबह आया था उसकी चर्चा में किसी चीज में प्रश्न करती हूँ।